एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही रोमांचक विषय पर बात करने वाले हैं, अतिचालकता, या जिसे हम सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं।
सुनने में ही जादू जैसा लगता है ना।
हाँ
नमस्कार। हाँ बिल्कुल, ऐसी चीजें जो बिजली को बिना किसी बिल्कुल जीरो रुकावट के बहने दें, ये सोचना ही कमाल का है।
और आज हमारी ये चर्चा स्टीफन ब्लंडेल के काम पर आधारित है। वो एक भौतिक विज्ञानी है, खास तौर पर उनकी एक किताब है सुपर कंडक्टिविटी, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन।
हाँ, और ये टॉपिक सिर्फ लैब कोट वाले वैज्ञानिकों के लिए ही नहीं है, आज ही हमारी जिंदगी में घुस रहा है।
अच्छा, कैसे?
देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स के जो अजीब नियम है वो अब सिर्फ छोटे छोटे कणों तक सीमित नहीं रहे, वो अब बड़े पैमाने पर असर दिखा रहे हैं। जैसे अस्पतालों में MRI मशीनें हैं,
हाँ हाँ सुना है।
या भविष्य की एनर्जी टेक्नोलॉजीज। तो अति चालकता अब सिर्फ किताबों की बात नहीं रही, ये आने वाले कल की टेक्नोलॉजी की नींव बन रही है।
तो ये स्टीफन ब्लंडेल कौन है, उनके बारे में थोड़ा बताइए।
जरूर। स्टीवन ब्लंडेल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, और उनका खास एरिया है कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स।
कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स
मतलब पदार्थ की ठोस और तरल अवस्थाओं का विज्ञान। इसमें वो चुंबकत्व, अतिचालकता और जो नए क्वांटम पदार्थ आ रहे हैं उनके एक्सपर्ट हैं।
अच्छा,
और उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो बहुत मुश्किल साइंटिफिक रिसर्च को भी आसान भाषा में समझा सकते हैं, आम लोगों तक पहुंचाने में माहिर हैं।
हाँ ये तो बहुत जरूरी है। और मैंने पढ़ा कि उन्हें थ्योरी के साथ साथ एक्सपेरिमेंट का भी अनुभव है।
बिल्कुल, और यही चीज उनके नजरिए को खास बनाती है। वो अतिचालकता को सिर्फ गणित के फॉर्मूलों की तरह नहीं देखते, बल्कि एक असल चीज की तरह देखते हैं जिसके वास्तविक नतीजे हैं।
और शायद इसीलिए वो बिना ज्यादा मुश्किल मैथ्स के भी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर पाते हैं।
हाँ, उनका फोकस वैचारिक स्पष्टता पर ज्यादा रहता है, जो इसे समझने में बहुत मदद करता है।
तो उनकी किताब अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, इसका मेन आइडिया क्या है? ये किन लोगों के लिए है?
ये किताब, जैसा नाम से ही जाहिर है, अति चालकता का एक संक्षिप्त लेकिन काफी व्यापक परिचय है। ये उन स्टूडेंट्स या आम लोगों के लिए है जो विज्ञान में रुचि रखते हैं और इस रहस्यमयी घटना को समझना चाहते हैं।
तो ये कहां से शुरू करती है?
ये बिल्कुल शुरुआत से लेके चलती है। 1911 में इसकी अचानक खोज हुई थी। वहां से लेकर आज की जो हमारी समझ है, जैसे BCS सिद्धांत और भविष्य में क्या संभावनाएं हैं, सब कवर करती है।
और किताब का जो सेंट्रल मैसेज है वो क्या है?
देखिए, सबसे बड़ा आइडिया ये है कि अति चालकता सिर्फ बेहतर कंडक्टिविटी नहीं है। ऐसा नहीं कि बिजली बस थोड़ी आसानी से बह रही है, नहीं।
तो फिर
ये पदार्थ की एक पूरी तरह से अलग अवस्था है। जैसे सॉलिड लिक्विड गैस होती है, वैसे ही एक अति चालक अवस्था। और कमाल की बात यह है कि इस अवस्था को बड़े पैमाने पे, हमारी आंखों के सामने क्वांटम मैकेनिक्स के नियम कंट्रोल करते हैं।
अरे वाह, क्वांटम दुनिया का असर हमारी रोजमर्रा की दुनिया में दिख रहा है।
बिल्कुल, ये हमारी आम समझ को चुनौती देता है और साथ ही नई टेक्नोलॉजी का रास्ता भी खोलता है। ब्लंडेल दो मेन चीजों पर फोकस करते हैं, एक तो शून्य प्रतिरोध और दूसरा मीसनर प्रभाव।
मीसनर प्रभाव, ये क्या है?
हाँ, हम इस पर आएंगे। ये असल में अति चालकता की असली पहचान है।
ठीक है, तो थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। शुरुआत कैसे हुई? आपने 1911 का जिक्र किया।
हाँ, 1911 में एक डच साइंटिस्ट थे, हेक कैमरलिंग ओनिस। वो बहुत कम तापमान पर चीजों के व्यवहार को स्टडी कर रहे थे।
अच्छा, बहुत ज्यादा ठंड में?
हाँ, बहुत ज्यादा। उन्होंने पारे मर्क्यूरी को ठंडा करना शुरू किया, और जब तापमान 4.2 केल्विन तक गिरा,
4.2 केल्विन,
ये सेल्सियस में कितना हुआ?
ये शून्य से लगभग 269 डिग्री सेल्सियस नीचे, एब्सोल्यूट जीरो के बहुत करीब।
बाप रे, बहुत ही ठंडा।
हाँ, तो उस तापमान पर उन्होंने देखा कि पारे का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, बिजली रोकने की क्षमता अचानक से गायब हो गई, बिल्कुल जीरो।
जीरो?
एकदम जीरो। ये बिल्कुल अनपेक्षित था, और यहीं से क्रांतिक तापमान या TC का कॉन्सेप्ट आया, वो खास टेम्परेचर जिसके नीचे चीज सुपरकंडक्टर बन जाती है।
तो ये जीरो रेजिस्टेंस पहली बड़ी खोज थी।
हाँ, और ये सिर्फ बहुत कम नहीं है, ये सचमुच जीरो है। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है पर्सिस्टेंट करंट्स।
पर्सिस्टेंट करंट्स?
हाँ, अगर आप एक सुपरकंडक्टिंग तार का लूप बना दें और उसमें एक बार करंट चालू कर दें, तो वो करंट बिना किसी बैटरी के, बिना किसी पावर सोर्स के, महीनों सालों तक बहता रह सकता है।
क्या बात कर रही है, सालों तक?
हाँ,
क्योंकि एनर्जी का कोई लॉस ही नहीं हो रहा है,
रुकावट ही नहीं है। ये अपने आप में बहुत अजीब है ना? कमाल है, ये तो पहला पिलर हुआ। दूसरा आपने बताया था माइजनर प्रभाव।
हाँ, मीजनर इफेक्ट। ये 1933 में वाल्थम मीजना और रॉबर्ट ऑक्सनफेल्ट ने खोजा था, और ये शून्य प्रतिरोध से भी ज्यादा फंडामेंटल है अतिचालकता के लिए।
अच्छा,
इसमें क्या होता है?
इसमें ये होता है कि जब कोई चीज क्रांतिक तापमान से नीचे जाकर अतिचालक बनती है तो वो अपने अंदर मौजूद किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को एक्टिवली बाहर धकेल देती है।
बाहर धकेल देती है? हाँ। मतलब अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है।
हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को अंदर आने से रोकता नहीं है, बल्कि अगर पहले से अंदर है भी तो उसे बाहर निकाल फेंकता है। इसी को परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म या पूर्ण प्रतिचुंबकत्व कहते हैं।
ये तो बड़ा अजीब है, एक परफेक्ट कंडक्टर ऐसा नहीं करेगा।
नहीं, एक काल्पनिक परफेक्ट कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में ठंडा किया जाए तो वो फील्ड को अंदर ही ट्रैप कर लेगा, बाहर नहीं फेंकेगा। यही मीजनर प्रभाव सुपर कंडक्टर को परफेक्ट कंडक्टर से अलग करता है, और इसी वजह से वो मैग्नेटिक लेविटेशन होता है जो वीडियो देखते हैं हम।
बिल्कुल, जब एक चुंबक को सुपर कंडक्टर के पास लाते हैं तो सुपर कंडक्टर अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड को घुसने नहीं देता, उसे बाहर धकेलता है। इसी धकेलने वाले फोर्स से चुंबक हवा में तैरने लगता है।
समझ गया। तो ये दो मेन गुण हो गए, जीरो रेजिस्टेंस और मीसनर इफेक्ट। लेकिन आपने कहा कि कुछ सीमाएं भी हैं।
हाँ, ऐसा नहीं है कि ये अवस्था हमेशा बनी रहती है। क्रांतिक तापमान टीसी के अलावा दो और चीजें हैं जो इसे खत्म कर सकती हैं।
क्या है वो?
एक है क्रांतिक धारा जेसी। अगर आप बहुत ज्यादा करंट बहाने की कोशिश करेंगे तो अतिचालकता खत्म हो जाएगी। और दूसरा है क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र HC। अगर आप उसे बहुत शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तब भी वो वापस नॉर्मल हो जाएगा।
अच्छा, तो शुरुआत में वैज्ञानिक इसे एक्सप्लेन कैसे कर रहे थे?
शुरुआत में ये पहेली जैसा था। 1930s में लंडन ब्रदर्स फ्रिड्स और हाइंस लंडन ने कुछ इक्वेशंस दी, जिन्हें लंडन इक्वेशंस कहते हैं। ये पहली कोशिश थी जीरो रेजिस्टेंस और मीजनर इफेक्ट को गणित से जोड़ने की।
उन्होंने क्या बताया?
उन्होंने एक पेनेट्रेशन डेप्थ का कॉन्सेप्ट दिया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एकदम सतह से ही बाहर नहीं हो जाता, बल्कि थोड़ा सा अंदर तक घुसता है फिर जीरो होता है। ये एक जरूरी कदम था पर पूरी कहानी नहीं थी।
और फिर थर्मोडायनेमिक्स का भी रोल आया।
हाँ, थर्मोडायनेमिक्स से ये कन्फर्म हुआ कि सुपर कंडक्टिंग ट्रांजिशन एक असली फेज ट्रांजिशन है, जैसे पानी का बर्फ बनना। ये सिर्फ गुणों में धीरे धीरे बदलाव नहीं है।
और यहीं पर एनर्जी गैप का आइडिया आया।
बिल्कुल, पता चला कि सुपरकंडक्टिंग अवस्था में इलेक्ट्रॉनों के लिए एक मिनिमम एनर्जी लेवल बन जाता है, मतलब उन्हें नॉर्मल अवस्था में भेजने के लिए कम से कम उतनी एनर्जी, जिसे डेल्टा कहते हैं, देनी ही पड़ेगी।
अच्छा, ये गैप क्यों जरूरी है?
ये गैप ही इसे स्थिरता देता है। छोटी मोटी टक्करें या वाइब्रेशंस इलेक्ट्रॉनों को इस गैप के पार नहीं धकेल पाती, इसलिए वो बिना रुकावट बहते रहते हैं। ये स्टेबिलिटी की कुंजी है।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो वही था, इलेक्ट्रॉन जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो वो मिलकर ऐसी शांत अवस्था कैसे बना सकते हैं?
हाँ, ये सबसे बड़ी पहेली थी। इसका जवाब 1956 में लियोन कूपर की एक ब्रिलियंट इंसाइट से आया।
कूपर, BCS थ्योरी वाले?
हाँ वही। उन्होंने दिखाया कि क्रिस्टल लैटिस यानी परमाणुओं का जो जाल होता है पदार्थ के अंदर,
हाँ हाँ,
उसके वाइब्रेशंस जिन्हें फोनॉन कहते हैं, उनके जरिए इलेक्ट्रॉनों के बीच एक अप्रत्यक्ष हल्का सा खिंचाव पैदा हो सकता है।
खिंचाव इलेक्ट्रॉनों के बीच, कैसे?
ब्लंडेल इसका एक अच्छा उदाहरण देते हैं, जैसे एक गद्दे पर दो बॉलिंग गेंदें रखी हों। एक गेंद गद्दे को थोड़ा दबाएगी, है ना?
हाँ।
तो दूसरी गेंद उस दबे हुए हिस्से की तरफ अपने आप खिंची चली आएगी। कुछ वैसा ही यहाँ होता है। एक इलेक्ट्रॉन लैटिस को थोड़ा डिस्टर्ब करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन उस डिस्टरबेंस की तरफ आकर्षित हो जाता है।
अरे वाह, मतलब सीधा अट्रैक्शन नहीं बल्कि लैटिस के जरिए।
बिल्कुल, और इन इलेक्ट्रॉनों के जोड़ों को कहा गया कूपर पेयर्स।
कूपर पेयर्स, और यहीं से BCS थ्योरी आई।
हाँ, 1957 में जॉन बार्डीन, लियोन कूपर और रॉबर्ट शिफ्रे ने मिलकर BCL थ्योरी दी, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। ये सुपर कंडक्टिविटी की पहली पूरी माइक्रोस्कोपिक व्याख्या थी।
इस थ्योरी ने क्या समझाया?
इसने बताया कि क्रांतिक तापमान के नीचे ये सारे कूपर पेयर्स मिलकर एक अकेली विशाल क्वांटम अवस्था में संघनित हो जाते हैं।
संघनित मतलब?
मतलब सोचिए जैसे लाखों करोड़ों सैनिक एक साथ एक ही ताल में कदम मिला रहे हों। ये सारे जोड़े एक सिंगल क्वांटम वेव की तरह बिहेव करते हैं, एक सुसंगत कोहेरेंट क्वांटम तरल बन जाता है।
अच्छा,
अब अगर आपको इस बहाव में रुकावट डालनी है तो आपको किसी एक दो जोड़े को नहीं बल्कि इस पूरे कलेक्टिव स्टेट को डिस्टर्ब करना होगा, और उसके लिए आपको कूपर पेयर को तोड़ना पड़ेगा, जिसमें कम से कम एनर्जी गैप डेल्टा जितनी एनर्जी लगती है।
और छोटी मोटी बाधाओं में उतनी एनर्जी होती नहीं है।
बिल्कुल, इसीलिए ये क्वांटम तरल बिना बिखरे बिना रुकावट बहता है। इसने जीरो रेजिस्टेंस और एनर्जी गैप दोनों को खूबसूरती से समझा दिया।
तो BCS थ्योरी ने सब कुछ सुलझा दिया
काफी हद तक। हाँ, ये एक जबरदस्त कामयाबी थी। लेकिन फिर पता चला कि सारे सुपरकंडक्टर एक जैसे नहीं होते, दो मेन टाइप होते हैं, Type 1 और Type 2।
Type 1 और Type 2, इनमें क्या फर्क है?
Type 1 जैसे पारा या सीसा, वो होते हैं जो एक कमजोर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड HC तक परफेक्ट मीसनर प्रभाव दिखाते हैं और फिर अचानक नॉर्मल हो जाते हैं। ये ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है।
और Type 2?
Type 2 वाले, जिनमें ज्यादातर एलॉय और सिरामिक्स आते हैं, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उनके दो क्रिटिकल फील्ड होते हैं, HC1 और HT2।
दो?
हाँ, HC1 तक वो Type 1 जैसा बर्ताव करते हैं, लेकिन HC1 और HC2 के बीच वो एक मिक्स स्टेट या वोर्टेक्स स्टेट में चले जाते हैं।
वोर्टेक्स स्टेट, भंवर।
हाँ, इस स्टेट में वो मैग्नेटिक फील्ड को पूरी तरह बाहर नहीं फेंकते, बल्कि उसे पतली पतली क्वांटाइज्ड फ्लक्स ट्यूब्स या वोर्टिसेस के रूप में अपने अंदर घुसने देते हैं। बाकी हिस्सा अभी भी सुपरकंडक्टिंग रहता है।
अच्छा,
ये तो चालाकी हुई।
हाँ, और कमाल की बात यह है कि ये वोर्टिसेस मटेरियल के अंदर के डिफेक्ट्स पर पिन हो सकते हैं, मतलब अटक सकते हैं। इसे फ्लक्स पिनिंग कहते हैं।
इसका क्या फायदा है?
इसी फ्लक्स पिनिंग की वजह से Type 2 सुपरकंडक्टर बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड झेल सकते हैं बिना नॉर्मल हुए, और इसीलिए MRI मशीनों या पार्टिकल एक्सेलरेटर में यही इस्तेमाल होते हैं। समझ गया, ये तो बहुत जरूरी फर्क है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म ही हुई है ना, कुछ हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर्स की भी बात होती है।
बिल्कुल, 1986 में एक और बड़ा धमाका हुआ। जॉर्ज बेडनॉर्स और K. Alex Muller ने कुछ सिरेमिक्स जैसे पदार्थों क्यूप्रेट्स में 35 केल्विन पर सुपरकंडक्टिविटी खोज ली।
35 केल्विन, ये पहले के मुकाबले ज्यादा था?
बहुत ज्यादा। उस समय तक रिकॉर्ड शायद 23 केल्विन के आसपास था, और फिर तो जैसे बाढ़ आ गए। कुछ ही समय में ऐसे पदार्थ मिल गए जो लिक्विड नाइट्रोजन के बॉइलिंग पॉइंट 77K से भी ऊपर सुपरकंडक्टिंग थे।
77 केल्विन?
जी,
मतलब -196 डिग्री सेल्सियस।
जी
हाँ, ये एक क्रांति थी।
जी,
क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन लिक्विड हीलियम जो 4.2K पर उबलता है के मुकाबले बहुत सस्ता और आसानी से उपलब्ध है। इसने प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की उम्मीदों को बहुत बढ़ा दिया।
लेकिन इनका मैकेनिज्म अलग है। हाँ, यही पेच है। आज तक कोई पक्के तौर पर नहीं जानता कि ये हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर्स HTS काम कैसे करते हैं। ऐसा लगता है कि इनका मैकेनिज्म पारंपरिक BCS थियोरी से अलग है। ये आज भी कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है।
तो ये पूरी कहानी सुनने के बाद क्या बड़े संदेश या थीम्स निकलते हैं?
मेरे ख्याल से सबसे पहला और सबसे गहरा सबक तो यही है कि क्वांटम मैकेनिक्स के नियम सिर्फ माइक्रोस्कोपिक दुनिया तक ही सीमित नहीं है, वो हमारी मैक्रोस्कोपिक यानी देखी छुई जा सकने वाली दुनिया में भी इतने नाटकीय ढंग से सामने आ सकते हैं। अति चालकता इसका जीता जागता सबूत है।
हाँ, ये हमारी रोजमर्रा की समझ को चैलेंज करता है। दूसरा,
सिद्धांत और प्रयोग के बीच का जो रिश्ता है, कैसे एक अचानक हुई खोज ओनिस दशकों तक वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर करती है, फिर एक थियरी BCS आती है जो उसे समझाती है, और फिर एक नई खोज HTS उस थियरी पर ही सवाल खड़े कर देती है। ये दिखाता है कि विज्ञान कैसे आगे बढ़ता है, एक सतत प्रक्रिया है।
और तीसरा, मटेरियल साइंस और फंडामेंटल फिजिक्स का कनेक्शन।
बिल्कुल, नई सामग्री जैसे क्यूप्रिट्स बनाने से बिल्कुल नई तरह की फिजिक्स सामने आ गई। ये दिखाता है कि नई चीजें बनाने से हम प्रकृति के नए राज खोल सकते हैं।
चौथा शायद ये कि कैसे बेसिक रिसर्च आगे चलकर बड़ी टेक्नोलॉजी बन जाती है।
हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। किसने सोचा होगा कि ओनिस का पारे को ठंडा करने का प्रयोग एक दिन MRI या पार्टिकल एक्सेलरेटर जैसी चीजों को जन्म देगा? ज्ञान की खोज कभी बेकार नहीं जाती।
और पांचवा, कि हमें अभी भी सब कुछ नहीं पता, HTS का रहस्य ये याद दिलाता है।
सही कहा, विज्ञान हमेशा एक अधूरा काम है, हमेशा सीखने को कुछ नया होता है।
और छठा, कमरे के तापमान पर सुपरकंडक्टर की खोज का सपना।
हाँ, ये इस फील्ड का होली ग्रेल है। अगर ऐसा हो गया तो ऊर्जा से लेके कंप्यूटिंग तक सब कुछ बदल सकता है।
स्टीफन ब्लंडेल के काम से कुछ यादगार बातें या कोट्स भी हैं।
हाँ, जैसे उनका ये कहना कि अति चालकता शायद भौतिकी द्वारा पेश किए गए जादू के सबसे करीब की चीज है। ये सच में इसकी अद्भुत प्रकृति को दर्शाता है।
या ये विचार कि हर अतिचालक अपने आप में एक बड़ी क्वांटम वस्तु है, मतलब एक ऐसी चीज जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन वो क्वांटम नियमों से चल रही है।
एक और गहरा विचार है बीसीएस थ्योरी के बारे में। बीसीएस सिद्धांत ने दिखाया कि पूरा सिस्टम सिर्फ उसके हिस्सों का जोड़ नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा हो सकता है। ये कूपर पेयर्स के कॉर्पोरेशन की बात है।
हाँ, कि कैसे इलेक्ट्रॉन मिलकर वो कर दिखाते हैं जो अकेले नहीं कर सकते।
और ये भी कि मीसनर प्रभाव ही अतिचालकता की असली पहचान है, सिर्फ शून्य प्रतिरोध नहीं। ये इसके फंडामेंटल नेचर पर जोर देता है।
एचटीएस की खोज पर भी एक जरूरी बात है। उच्च तापमान अतिचालकों की खोज ने हमें याद दिलाया कि प्रकृति हमें अभी भी चौंका सकती है और हमारी सैद्धांतिक समझ अधूरी है।
ये हमें विनम्र बनाता है और भविष्य के लिए ये लाइन बहुत दमदार है। कमरे के तापमान का अतिचालक तकनीक के लिए उतना ही क्रांतिकारी होगा जितना ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए था।
ये इसके संभावित इम्पैक्ट का स्केल बताता है। अच्छा, अब थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं। ये सब असल जिंदगी में कहाँ इस्तेमाल हो रहा है?
एमआरआई का जिक्र तो हुआ।
हाँ, एमआरआई शायद सबसे कॉमन एप्लीकेशन है। उन मशीनों में टाइप 2 सुपरकंडक्टिंग तारों, अक्सर नियोबियम टाइटेनियम NBTI से बने बहुत शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं। जीरो रेजिस्टेंस के कारण भारी करंट बहता है जिससे बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड बनता है
और उससे शरीर की तस्वीरें बनती हैं।
हाँ, वो फील्ड शरीर के पानी के प्रोटॉन्स को अलाइन करता है, फिर रेडियो वेव से उनकी पोजीशन मैप करके डिटेल्ड इमेज बनाई जाती हैं।
और बड़े साइंस एक्सपेरिमेंट्स में जैसे LHC, हाँ, सर्न के लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर जैसी मशीन्स में पार्टिकल्स को लगभग लाइट स्पीड पर दौड़ाया जाता है। उनके रास्ते को मोड़ने और फोकस करने के लिए हजारों सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट्स की जरूरत पड़ती है। इनके बिना ये संभव ही नहीं होता।
भविष्य में बिजली बचाने की भी बात थी।
हाँ, लॉसलेस पावर ट्रांसमिशन। अभी बिजली तारों से भेजने में काफी एनर्जी गर्मी बनके वेस्ट हो जाती है। सुपरकंडक्टिंग केबल्स थियोरेटिकली जीरो लॉस पर बिजली भेज सकते हैं,
लेकिन ठंडा रखने की चुनौती है।
हाँ हाँ, वो सबसे बड़ी चुनौती है। पर HTS आने से उम्मीदें बढ़ी हैं क्योंकि उन्हें लिक्विड नाइट्रोजन से ठंडा किया जा सकता है जो हीलियम से काफी सस्ता है। कुछ जगहों पर इसके पायलट प्रोजेक्ट्स चल भी रहे हैं।
और मैग्लेव ट्रेनें वो कैसे काम करती हैं?
मैग्लेव ट्रेनें भी सुपरकंडक्टर्स का इस्तेमाल करती हैं। ट्रेन पर लगे शक्तिशाली सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट्स और ट्रैक पर लगे कॉइल्स के बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ट्रेन पटरी से थोड़ा ऊपर उठ जाती है, लेविटेट करती है और आगे बढ़ती है। घर्षण ना होने से बहुत हाई स्पीड संभव है।
जापान और चीन में है शायद ऐसी ट्रेनें।
हाँ, वहाँ ऑपरेशनल लाइन्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसका रोल बढ़ रहा है। SQIDS नाम के डिवाइसेस हैं।
स्क्विड्स,
सुपरकंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइसेस। ये अब तक के सबसे सेंसिटिव मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर हैं। इतने सेंसिटिव कि दिमाग की बहुत हल्की मैग्नेटिक एक्टिविटी को भी नाप सकते हैं।
अरे वाह, इनका इस्तेमाल कहाँ होता है?
ब्रेन मैपिंग, MEG, जियोलॉजी में जमीन के नीचे मिनरल्स खोजने में, मटेरियल साइंस में, कई जगह, और सबसे आगे क्वांटम कंप्यूटिंग में।
क्वांटम कंप्यूटिंग में कैसे?
सुपरकंडक्टिंग सर्किट्स का इस्तेमाल करके क्विबिट्स बनाए जा रहे हैं जो क्वांटम कंप्यूटर के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये एक बहुत एक्टिव रिसर्च एरिया है।
तो इस पूरी चर्चा से आपके लिए सबसे बड़ा टेक अवे क्या है?
मेरे लिए शायद यही कि क्वांटम दुनिया कितनी अजीब और कितनी शक्तिशाली है और कैसे वो हमारी मैक्रोस्कोपिक दुनिया में ऐसे तरीकों से घुसपैठ करती है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अतिचालकता इसका एक जीता जागता और उपयोगी उदाहरण है।
मेरे लिए विज्ञान की प्रक्रिया, कैसे एक खोज होती है, फिर उसे समझने की कोशिश, फिर एक थ्योरी, फिर नई खोज जो उसे चैलेंज करती है, और इस सब के बीच टेक्नोलॉजी का विकास, ये दिखाता है कि ज्ञान की यात्रा कभी सीधी नहीं होती, लेकिन हमेशा आगे बढ़ती है।
और ये भी कि बेसिक साइंस में यकीन रखना कितना जरूरी है। जो चीज आज सिर्फ लैब में हो रही है वो कल हमारी जिंदगी बदल सकती है।
बिल्कुल। और ये सवाल भी मन में आता है कि क्या प्रकृति में ऐसे और भी मैक्रोस्कोपिक क्वांटम इफेक्ट्स छिपे हैं जिन्हें हम अभी देख नहीं पाए हैं?
ताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।